इस बहुत ही सुंदर श्लोक में भक्ति विनोद ठाकुर इस कलयुग का एक बहुत सुंदर और गहरा निरूपण कर रहे हैं। वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं हम सब से, जो हम कलयुग के निवासी हैं। प्रश्न ये है कि क्या हम कली, जिसकी तुलना भक्ति विनोद ठाकुर एक कुकुर से कर रहे हैं, कुकुर जानते हैं? हाँ, कुकुर नहीं जानते, किसे कहते हैं? एक कुत्ते को। तो कली की तुलना, इस कलयुग की तुलना एक कुत्ते से कर रहे हैं भक्त विनोद ठाकुर, और कहते हैं कि यदि इस कुत्ते रूपी कली को हम अपने जीवन से दूर भगाना चाहते हैं, तो प्रश्न पूछ रहे हैं, चाहते हैं कि नहीं? और क्यों वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं? क्योंकि इस प्रश्न में एक संशय उत्पन्न हो रहा है कि पता नहीं कलयुग के लोग चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कलयुग में गॉड को छोड़कर लोग डॉग को पूजेंगे, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विशेष रूप से पाश्चात्य देश में कुत्तों को पूजा जाता है। अभी हाल ही में वहां पर एक जैसे मनुष्यों में ये मिस्टर यूनिवर्स और मिस यूनिवर्स मनाते हैं, वैसे वो कुत्तों के समुदाय में भी वो लोग मनाना शुरू किए हैं कि अमेरिका के सारे कुत्तों में सबसे प्रमुख कौन सा कुत्ता है, प्रसिद्ध, जो ज्यादातर लोग अपने घरों में पालते हैं। और एक समारोह आयोजित किया गया था सभी कुत्तों का, तो अलग अलग प्रकार के कुत्तों की योनि और सब पालतू कुत्ते आए गए, और उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध है उसे एक मुकुट पहनाया गया। वो जैसे वो मिस यूनिवर्स को मुकुट पहनाते हैं, तो पहले सब कुत्ते स्टेज पर आकर अपने आप को दिखाकर जाते हैं, और सभी कहते हैं, वाह वाह, ये कुत्ता देखो, इसकी चाल देखो, और कितने सुंदर तरीके से भौंकता है। कितना सुंदर इसकी ध्वनि है। तो अलग अलग मार्क्स दे रहे थे उनके अलग अलग गुणों को देखते हुए, और एक विशेष रूप से ऑल्टर बनाया था उनके लिए। और जैसे हम भगवान के ऑल्टर के सामने भगवान की कीर्ति का गान करते हैं, वैसे ही ये लोग कुत्तों को उनके ऑल्टर पर बिठाकर कुत्तों का गान, कुत्तों की कीर्ति का गान ये कर रहे थे। और उसमें से जो सबसे प्रसिद्ध कुत्ता, जो ज्यादातर लोग अपने घरों में पाल कर रखे हैं, उसको एक मुकुट पहनाया गया। वो कुत्ते को पता नहीं क्या हो रहा है, वो सोच रहा होगा ये पता नहीं ये मनुष्यों को क्या हुआ है आज। जैसे हम देखते हैं मनुष्य समाज में ज्यादातर सारे मनुष्य जाते हैं जानवरों को देखने के लिए, चिड़ियाघर में। और कभी आप देखेंगे नहीं कि ये सारे जानवर एक साथ मिलकर आए हैं मनुष्यों की कॉलोनी में देखने के लिए। देखते हैं मनुष्य कैसे रहते हैं, कोई परवाह नहीं उन्हें। और ज्यादातर तो इन जानवरों को तकलीफ होती है मनुष्यों की वजह से। हालांकि पाश्चात्य देश में तो विशेष रूप से जो कुत्ते हैं वो बहुत, पता नहीं क्या पुण्य कर्म उन्होंने किए होंगे वहां पर, कौन सी अज्ञात सुकृति कि उन्हें ऐसा राजसी ठाक भाग दिया जाता है वहां पर। कुत्तों के लिए पलंग होता है, कुत्तों के लिए स्विमिंग पूल, कुत्तों को खेलने के लिए घसरगुंडी, हाँ वो भी है। हालांकि उसको ऊपर चढ़ाना और वहां से फेंकना वो बहुत कसरत का काम है, उसे पता नहीं कि क्या है, क्यों मुझे यहां से फेंका जा रहा है। और सबसे विनम्र सेवा करते हैं कुत्तों की। वो जानना चाहेंगे कौन सी विनम्र सेवा करते हैं? जब कुत्तों को टहलने ले जाते हैं वो, तो टहलते टहलते जब कुत्ते अपना महाप्रसाद, तो वहां पर नियम है कि कुत्ता यदि मल त्याग दे तो जो कुत्ते का मालिक है, हालांकि उसको कहते हैं कि कुत्ते का मालिक है, वो मालिक नहीं नौकर है कुत्ते का, और वो एक हाथ में ट्रे लेकर और उसको प्लास्टिक की थैली में डालकर और उसे फेंक भी नहीं सकता, अपने साथ रखेगा वो। तो मैंने एक भक्त से एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जब मैं देख रहा था कि ये लोग ये कार्य कर रहे हैं, तो वो भक्त थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने कहा कि पूरी अमेरिका में शायद ऐसा प्रश्न किसी को नहीं आया होगा ये कार्य के विषय में। जानना चाहेंगे क्या प्रश्न पूछा था? नहीं, मैंने कहा कि यदि कुत्ते को दस्त हो जाए तो कैसे उठाते हैं लोग। तो वो कहे कि भाई ये तो हमने, ये पूरी अमरीकी सरकार ने कभी सोचा नहीं होगा, तो इसका रिसर्च करना होगा। तो इस कलयुग में जहां पर इसे, एक बार श्रील प्रभुपाद जी वो अमेरिका के एक प्रांत में सुबह का भ्रमण कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि एक बहुत ही विशाल इमारत, बहुत ही सुंदर इमारत प्रभुपाद ने देखी। तो प्रभुपाद जी ने कहा, सभी चल रहे थे और प्रभुपाद जी जब मॉर्निंग वॉक पर चला करते थे तो सभी भक्त, हर समय कुछ नई घटना होती प्रभुपाद जी के साथ। आज प्रभुपाद जी ने ये देखकर ये कहा, आज प्रभुपाद जी ने घास को देखकर कहा कि ये पीला घास और ये हरा घास क्या अंतर है दोनों में बताओ। तो अलग अलग सारे भक्त अपना साक्षात्कार बताते थे कि पीला घास मतलब चैतन्य महाप्रभु, हरा घास मतलब रामचंद्र जी। नहीं, फिर एक ने कहा घास मतलब तृणादपि सुनी चेन, वो तृण से भी अधिक, तो पीला घास मतलब वो ज्यादा नम्र है हरे घास से। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ये भी नहीं। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि पीले घास में और हरे घास में अंतर क्या है, कि जो हरा घास है वो अब जड़ से जुड़ा हुआ है इसलिए हरा भरा है, और जो पीला घास है जड़ से उसका संबंध टूट गया है इसलिए वो पीला हो गया है। तो प्रभुपाद जी ने कहा उसी प्रकार से जब हम भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए रहते हैं, तो हमारी भी भक्ति हरी भरी रहती है, नहीं तो कृष्ण से विमुख और पीला या पीलिया का रोग। तो अक्सर जब प्रभुपाद जी ये मॉर्निंग वॉक में जाया करते थे तो सभी बहुत उत्सुक रहते थे प्रभुपाद जी के साथ जाने में और प्रभुपाद जी के अलग अलग साक्षात्कार। एक बार प्रभुपाद जी वो गाड़ी में बैठे थे, मॉर्निंग वॉक खत्म हो गया, प्रभुपाद जी गाड़ी में बैठकर अब मंदिर आ रहे थे, तो एक व्यक्ति वो साइकिल पे आया और अपनी साइकिल प्रभुपाद जी यहां पर बैठे थे जिस सीट पर, खिड़की की तरफ आकर पूछता है कि ये डंडा क्यों लेकर घूमते हैं आप लोग। तो प्रभुपाद जी ने कहा, कुत्तों को भगाने के लिए। और फिर उसे क्या लगा कि कोई ऐसा उत्तर दिया जाएगा जो बहुत ही शास्त्रिक होगा और शास्त्र का गुह ज्ञान मुझे मिलेगा कि ये लोग डंडा लेकर क्यों घूमते हैं सन्यासी। और प्रभुपाद जी उसके जाने के बाद कहे, और तुम्हारे जैसे। तो हर समय ये सारे भक्त बहुत उत्सुक रहते थे कि आज प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में क्या करेंगे। और प्रभुपाद जी कहीं पर भी देख लेते तो सभी रुक कर, अभी कुछ होने वाला है, प्रभुपाद जी ने देख लिया तो कुछ यहां पर प्रभुपाद जी अब अपना साक्षात्कार बताएंगे या हमें प्रश्न पूछेंगे। तो प्रभुपाद जी ने एक बड़ी इमारत देखी, बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी ने कहा, एक दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए हम इतनी बड़ी इमारत खड़ी करेंगे। जय प्रभुपाद, सभी लोग चिल्लाए। फिर प्रभुपाद जी जप करते करते आगे गए, एक बहुत बड़ी गाड़ी, उसको वहां पर लिमोजिन कहते हैं, मतलब भारत की परिभाषा में बस है वो। और मैंने एक इतनी बड़ी गाड़ी देखी वहां पर जिसमें एक आदमी बैठा है और वो जो ड्राइवर है और वो आदमी के बीच में 20 फुट का अंतर है। तो प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी एक वो गाड़ी जिसे लिमोजिन कहते हैं, प्रभुपाद जी ने देखा और प्रभुपाद जी ने कहा, एक दिन ऐसी ही गाड़ी हम भगवान श्री कृष्ण के लिए लेंगे। जय श्री प्रभुपाद। सभी लोग कहे, प्रभुपाद जी आगे चले। और फिर जैसे ही प्रभुपाद जी ने एक मोड़ पर मोड़ लिया तो वहां से बड़ा कुत्ता, एकदम घोड़े के समान इतना बड़ा या गधे के समान इतना बड़ा कुत्ता, और वो कुत्ता ऐसे सामने हांफते हुए और उसके पीछे जो है वो भी हांफते हुए उसका मालिक। पता नहीं कौन किसको घुमा रहा था, इतना बड़ा था वो कुत्ता। तो प्रभुपाद जी ने कहा, एक दिन कृष्ण के लिए हम इतना बड़ा कुत्ता लेंगे। जय प्रभुपाद। और प्रभुपाद ने कहा, मूर्ख, कुत्ता क्या करेंगे कृष्ण के लिए लेकर। प्रभुपाद जी परीक्षा ले रहे थे इनके कि मैं जो कुछ कहूं जय प्रभुपाद, तो सभी को, हां कुत्ता क्या करेंगे हम लेकर। तो यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर कलयुग की तुलना एक कुत्ते से कर रहे हैं। अब देखिए, कुत्ता जो है वो बहुत सी ऐसी चीजें करता है जिससे घृणा होती है हमें। एक तो देखिए, कुत्ता बिना मतलब भौंकना शुरू कर देता है कभी। ज्यादातर जब नहीं भौंकना चाहिए तब शुरू करता है भौंकना रात के समय, और उसे लगता है कि रात्रि दिन भर वो सोता रहेगा, जब मनुष्य काम करते रहेंगे वो दिन भर सोता रहेगा, और जब मनुष्य सोने जाएंगे तब उसकी मंगल आरती शुरू होती है, तब शंख बजाकर सीधा भौं 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 शुरू करता है, और उसे क्या लगता है कि ये क्या पागल मनुष्य सो रहे हैं इस समय। और यदि किसी का पालतू कुत्ता हो तो वो तो घर पे जैसे ही कोई दूसरा अजनबी उसके उसके सड़क के सामने से भी गुजरे तो शुरू हो जाता है जोर जोर से, और आजकल तो सामने वो लोग लगा देते हैं, कुत्र्या पासून सावध रहा, कुत्तों से सावधान। तो किसी के घर पे जाओ तो सबसे पहले दर्शन होंगे कुत्तों का। तो कली जो है ये इसी प्रकार से है कि हालांकि कुत्ते जो हैं जानवरों में बहुत अधम हैं, कोई बहुत विशिष्ट जानवर नहीं कुत्ता, केवल एक गुण कुत्ते का बताया गया है भक्तिविनोद ठाकुर, वो एक गुण लेकर कुत्ते की तुलना वो एक भक्त से भी कर रहे हैं, और वो है वफादारी, कि कुत्ता वो बहुत वफादार होता है। जैसे बचपन में हमें एक कहानी थी, इस कहानी में ऐसा बताया गया था कि एक जॉइंट फैमिली है, तो माता पिता और उनके चार पांच बच्चे, उनके बहुएं, उनके बच्चे, सब एक साथ एक घर में। तो जो पिता है वो पिता बहुत वृद्ध हो गया है, और पिता अब कम समय है जीने के उनके, तो ये स्थिति बताई गई है कि वृद्ध पिता जिसके हाथ में सारी प्रॉपर्टी है और वो निर्णय लेंगे कि किसके भाग में कितनी प्रॉपर्टी जाने वाली है। तो एक दिन ये पिता घूमने के लिए सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, और घूमते घूमते वो एक ऐसी दुकान पर आते हैं जहां पर वो धूप के चश्मे होते हैं, क्या कहते हैं उसे, नहीं अंग्रेजी में तो पता है ठीक है आप लोग जानते हैं, गॉगल, मैं सोचा कि गॉगल नहीं समझे होंगे, तो गॉगल या सनग्लासेस। उसने देखा कि बहुत से हैं, तो उनमें से उसने सोचा कि मैं अपने पोते के लिए आज एक मेरी तरफ से खरीद कर ले जाता हूं। तो एक उसने एक चश्मा उठाया, और जैसे उसने वो चश्मा उठाया और सोचा कि पहन के देखता हूं कि चश्मा कैसा कैसा दिखता है चश्मे से, तो उस गॉगल को जैसे ही इस वृद्ध व्यक्ति ने पहना तुरंत उसके कानों में कुछ सुनाई देने लगा उसे। तो अब सुबह का समय, कोई शोरगुल भी नहीं, तो अचानक की आवाज कहां से आने लगी, तो तुरंत चश्मा निकाला, जैसे चश्मा निकाला आवाज बंद। बोला कुछ तो ये चश्मे से संबंधित है ये आवाज, फिर से चश्मा पहना आवाज शुरू, फिर से निकाला आवाज बंद। तो हो क्या रहा था कि जब वो चश्मा पहनता तो उसे वो चश्मा जादुई चश्मा था, वो जो व्यक्ति चश्मा पहनता तो आगे वाले के मन में क्या चल रहा है वो उसे सुनाई देता है। बहुत खतरनाक है ऐसा चश्मा। यदि प्रवक्ता पहन ले उसे तब तो वो एक शब्द नहीं कह पाएगा, अलग अलग आवाजें सुनाई देंगी उसे, फिर आ गए फिर से बोर करने, और पता नहीं क्या क्या आवाजें सुनाई देंगी। तो इसने जैसे वो चश्मा पहना तो वो जो दुकानदार था उसके मन में वो क्या बोल रहा है सुनाई देने लगा चश्मा पहनते। तो दुकानदार कहता है आज सुबह सुबह बुढ़ऊ आए हैं, तो उसे ये सब कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है लेने दो लेने दो, इसका दुगना बताऊंगा दाम पूछेगा तो। तो इन्होंने पूछा क्या दाम है, 200 रुपए। और झूठ कहते हो, 100 रुपए का 200 कहते हो। तो दुकानदार थोड़ा अरे कोई साधारण नहीं लगता। तो थोड़ा वहां पर वाद विवाद हुआ दाम के ऊपर, परंतु बहुत आकर्षित हो गए ये पिताश्री वो चश्मा लेने में, तो चश्मा खरीद लिया और सोचा कि अब जाकर मैं देखता हूं मेरे परिवार वाले मेरे विषय में क्या सोचते हैं। तो चश्मा पहनकर घर के अंदर प्रवेश किया, तो जैसे चश्मा पहन के घर के अंदर प्रवेश किया तो सबसे बड़ा लड़का, अरे आज सठिया गया ज्यादा लगता है। तो वो अपने बड़े लड़के की तरफ देख रहे हैं, अब क्या कहे, सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा है। तो सहन किया। अब नाश्ते का टेबल पर सब लोग नाश्ते के लिए बैठे, तो इन्होंने सोचा कि ठीक है लगा कर रखता हूं मैं चश्मा। तो नाश्ते के टेबल पर चश्मा लगा कर बैठे, तो बहू आती है, अब तो बड़ी बहू है वो आती है नाश्ता डालने के लिए, आज जवानी चढ़ी लगता है। तो अब वो नाश्ता अंदर नहीं जा रहा, ये सब कुछ, और सारे पुत्र और वो सब बैठे हैं नाश्ते में, एक कह रहा है कि अरे हम मरने का इंतजार कर रहे हैं, ये और जवानी चढ़ा रहे हैं अपने ऊपर। तो सभी एक एक पुत्र एक एक सदस्य परिवार का केवल ये सब उल्टा सीधा, कब ये मरेगा, सठिया गया, जवानी चढ़ रही है इस उम्र में, ये सब कुछ। तो ये धीरे धीरे युवती ने जान लिया कि इस पूरे परिवार में कोई नहीं है जो मेरा शुभ चिंतक है, सब मेरे मरने की प्रतीक्षा में हैं। तो वो हताश होकर व्यक्ति बैठ गया, और तभी घर का जो कुत्ता है वो पूंछ हिलाते हिलाते भाग कर आया। तो इन्होंने सोचा कि देखते हैं कुत्ते क्या सोचते हैं अपने मालिक के विषय में। तो जब कुत्ता आया और तलवे चाटने लगा, उनकी आदत होती है मालिक के तलवे चाटते हैं, केवल कुत्तों की आदत नहीं होती बहुतों की आदत होती है। तो कुत्ता तलवे चाटने लगा, तो तुरंत वो चश्मा पहन लिया, जैसे चश्मा पहन लिया तो कुत्ता मन में क्या सोच रहा है ये सुनाई देने लगा। तो देखिए कुत्ता अपनी भाषा में कैसे कहेगा, कल्पना कीजिए। तो कुत्ता कहने लगा, अरे आज स्वामी महाराज आप इतने सुंदर दिख रहे हैं इस चश्मे में, और अच्छे अच्छे से चाटने लगा तलवार, और जोर जोर से पूंछ हिलाने लगा, और अपने मालिक के चश्मे की तरफ देख रहा है, वाह 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 अति सुंदर अति अति सुंदर। और वो केवल गुणगान कर रहा है इस व्यक्ति के चश्मे पहनने का। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि इस पूरे परिवार में केवल ये कुत्ता है जो मुझे मन से चाहता है, जो वफादार है। तो इस कहानी में अंत में बताया गया कि इस व्यक्ति ने जब अपनी जायदाद साइन की तो पूरी जायदाद कुत्ते के नाम तो कुत्ते का ये गुण है जो भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में गाते हैं कि वफादार कुत्ता वफादार होता है। उसी प्रकार से हमें भी कृष्ण का कुत्ता बनना है और वफादार कुत्ता। और देखिए जो पालतू कुत्ता होता है वो जब बाहरी बाहर का कोई अजनबी या कोई चोर आता है तो वो भौंकता है। जैसे कई बार हमने ऐसे भी कुत्ते देखे हैं चाहे कोई भी आए जाए वो देखेंगे हाँ आया ठीक आओ आओ। उनमें भी होते हैं कोई रजोगुण में सत्वगुण में तमोगुण में भी होते हैं। तो कई ऐसे होते हैं हमारे एक परिवार में एक ने कुत्ता रखा था उसे इतना ज्यादा प्रशिक्षण दिया। मेरा एक दोस्त था वो बता रहा था कि उसने एक नया नया कुत्ता लाया और पत्नी ने लाया था पत्नी की बहुत इच्छा थी कुत्ते रखने की तो बता रहा था मुझे कि मेरी पत्नी ने कुत्ता लाया और इतना समय उस कुत्ते के पीछे टॉमी शेक हैंड तो उसका नाम टॉमी रखा और फिर शेक हैंड उसके सिखा रहे हैं वो सिखाया जाता है ना कि ऐसे हाथ ऊपर करो शेक हैंड करो जाके न्यूज़पेपर लेकर आओ ये कर कर आओ वो कर कर आओ। तो वो उसकी पत्नी सिखा रही थी उस कुत्ते को सब कुछ और कुत्ता सीख नहीं रहा था। तो ये मुझे बताया इस व्यक्ति ने कि मैं एक दिन घर आया और मैं थका आ रहा और ये कुत्ते को सिखा रही है शेक हैंड सिट डाउन गेट अप ये सब। तो मैंने कहा कि अरे छोड़ो वो नहीं सीखने वाला उसको नहीं सीखना जबरदस्ती क्यों। तो इस व्यक्ति ने कहा मेरी पत्नी कहती है कि क्यों नहीं तुम भी तो पहले ऐसे ही थे। अब देखो बिना बोले सब कुछ हो रहा है। तो थोड़ा धैर्य रखो और मुझे विश्वास है। तो व्यक्ति मुझे अपना साक्षात्कार बता रहा था। तो एक जो प्रामाणिक कुत्ता होता है पता नहीं आज ये भजन ले लिया है इसलिए कुत्तों के विषय में थोड़ी चर्चा हो रही है। एक जो प्रामाणिक कुत्ता होता है वो अजनबी पर भौंकता है और अपनों को लाड़ करता है। तो उसी प्रकार से एक जो भगवान श्री कृष्ण का शरणागत कुत्ता होगा वो जब माया का प्रकोप होगा तो उसे भौंकना चाहिए और अपने भक्तों के समुदाय में उसे लाड़ दिखाना चाहिए। परंतु कई बार उल्टा हो जाता है ना जब माया का प्रकोप या माया का प्रहार होता है या कोई प्रलोभन होता है तो पूंछ हिलाते हिलाते जाते हैं कहां है। और कई बार जब भक्तों का फोन आता है हरे कृष्णा प्रभु जी आए नहीं प्रोग्राम के लिए हाँ सुनाई नहीं दे रहा क्या कह रहे हैं प्रभु जी थोड़ा नेटवर्क क्लियर नहीं है। तो कई बार वो हमें ठेस पहुंचाता है। हमारे इस्कॉन के एक बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी हैं वो अपने विषय में एक बार बता रहे थे कि भक्ति में आने से पहले उनकी एक गर्लफ्रेंड थी और वो जो गर्लफ्रेंड थी एक पालतू कुत्ता था गर्लफ्रेंड का। तो वो गर्लफ्रेंड भारतीय फिलोसॉफिकल बुक पढ़ती थी दार्शनिक किताबें। तो भारत के कोई दार्शनिक हुए कृष्णमूर्ति जिनका नाम तो उनकी पुस्तक वो बहुत पढ़ा करती थी और इतनी अच्छी लगी वो पुस्तकें इस महिला को कि अपने कुत्ते का नाम रखा कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण मूर्ति इस फिलोसोफर की किताब पढ़ती थी तो कुत्ते का नाम रख दिया कृष्ण। तो हुआ ऐसा कि ये जो इनके बॉयफ्रेंड आगे चलकर ये जो भक्त बन गए, ये एक बार मिलने आए तो इस महिला ने कहा कि नहीं नहीं अरे अरे बाहर जाकर वो ढूंढ कर आओ, वो कृष्णा खो गया कुत्ता, ढूंढ कर आओ। वे कौन? उसका नाम है कृष्णा, वो गली में कहीं चला गया, जाकर ढूंढ कर लाओ उसे। तो ये जा रहे हैं गली में जा रहे हैं और जाते जाते अब नाम पुकार रहे हैं कृष्णा कृष्णा, भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं ये न के न प्रकार है ना। हालांकि मन में केवल कुत्ता कहां है परंतु मुख से कृष्ण का नाम निकल रहा है। तो कृष्णा कृष्णा कर चिल्लाते हुए वो जा रहे थे और सामने से हरे कृष्णा भक्तों का नगर संकीर्तन आ रहा था और वो लोग क्या कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो उनका नगर संकीर्तन चल रहा है और ये यहां पर खड़े होके सुन रहे हैं, अरे ये भी वही नाम कह रहे हैं परंतु उसके साथ और भी बहुत कुछ नाम कह रहे हैं, शायद इनको पूरा नाम पता है। सरनेम के साथ कह रहे हैं लगता है। तो वो ध्यान से सुनने लगे तो उन्हें पहले आश्चर्य हुआ कि इन लोगों को कैसे पता कि ये कुत्ता खो गया, और अपने भक्त तो जोर जोर से और एक भक्त तो ऐसे भाव विभोर होकर हाथ ऊपर करके गा रहे थे मानो कहां हो कृष्ण। लगा कि हां ये शायद वास्तविक रूप में ढूंढ रहा है। तो ये गए, एक भक्त को रुकाया और पूछा कि आप कृष्ण को ढूंढ रहे हैं? तो एक भक्त ने कहा हां हम सब कृष्ण की खोज में हैं। अच्छा आप सब कृष्ण की, हां हम सब कृष्ण की खोज में। तो भक्त ने पूछा और आप? मैं भी कृष्ण की खोज में हूं। बोला आ जाओ। तो वो भी इनके साथ ज्वाइन हो गए। बोले कि लेकिन ये हाथ ऊपर क्यों कर रहे हैं? बोले हाथ ऊपर करने से ही तो भगवान मिलते हैं, हालांकि उन्होंने भगवान नहीं कहा, कृष्ण मिलते हैं। तो इनको कहा तुम भी हाथ ऊपर करो, अभी भी हाथ ऊपर किए और हमारे साथ। बोले लेकिन उन तो केवल कृष्ण है। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण ऐसे नहीं मिलते, कृष्ण को पाने के लिए उनके पहले हरा हरे नाम लगाना होगा, तब कृष्ण मिलते। अच्छा अच्छा ये बात मुझे पता नहीं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और नगर संकीर्तन में उन्हें ले जाकर मंदिर तक ले आए और मंदिर तक लाकर कहा कि यहां पर हैं कृष्ण। बोला यहां पर इतनी दूर आ गया हो? मंदिर में ले जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह के सामने खड़ा कर दिया, ये हैं कृष्ण। देखा ये तो अलग ही है भाई, ये कुछ अलग ही माजरा चल रहा है यहां पर। तब फिर उन्हें सब कुछ बताया गया और आज वो हमारे इस्कॉन संस्था के एक बहुत ही प्रमुख और वरिष्ठ प्रचारक हैं। आगे चल के बताएंगे कौन है वो। तो देखिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं इस भजन में कि यदि हम चाहते हैं कि ये कली नामक कुकुर, इससे हम ये इससे छुटकारा मिले तो क्या उपाय है? श्री सचिनंदन गाओ हे, कि भगवान श्री सचिनंदन इनका कीर्तन हमें करना होगा, और तब जाकर ये जो कलयुग नामक कुकुर है इससे छुटकारा मिलेगा। और कलयुग के विषय में श्रीमद् भागवत में बहुत कुछ कहा गया है। जैसे देखिए, भक्तिवेदांत ठाकुर ने कुत्ते के विषय में कहा है कि ये सब कुछ कलि जो है उसके समान है, और एक वफादार कुत्ते का गुण जैसे भक्तों में होता है वैसे है। तो वैसे ही कलयुग के विषय में भागवत में कहा गया है, कलेर दोष निधे राजन। एक ही श्लोक में गुणगान भी किया गया है और एक ही श्लोक में कलयुग के जो दुर्गुण है उसके विषय में ही विश्लेषण किया है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तनत एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रिजेत। कि ये जो कलयुग है दोषों का सागर है, केवल कोई सरोवर या तालाब नहीं, सागर, और वो भी दोषों का। एक समुद्र में कितना जल होता है कोई गिन नहीं सकता, नाप नहीं सकता, उतने दोष हैं इस कलयुग में। तो यहां पर कलयुग का जो दुर्गुण है उसके विषय में श्रीमद् भागवत कह रहा है। उसके साथ साथ अस्ति एक महान गुण, एक महान गुण है, और वो क्या है? कीर्तनत एव कृष्णस्य, ये जो भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन है यही एकमात्र गुण है। परंतु ये एकमात्र गुण इतना प्रभावशाली है इस कलयुग में कि जितने भी दोष जो कि समुद्र के समान हैं, जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन की शरण ग्रहण करता है तो जैसे एक बछड़े के खुर में जितना पानी समाए उतना ये समुद्र संकुचित होकर इतना सा जल हो जाता है, और उसे पार कर पाना कोई कठिन है। एक बछड़े के खुर में कितना पानी समाएगा उसे पार कर जाना आराम से कोई व्यक्ति एक ही कदम में। तो ये पूरा जो कलयुग का दोष रूपी सागर है भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने से वो इतना सा हो जाता है। ये एक महान गुण है इस कलयुग में। और इसका साक्षात उदाहरण हम देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इसे जो खड़ा किया है, इसमें हम देखते हैं कि ये जो कलयुग रूपी सागर में हम रचे पचे थे और हम अपनी तरफ से और दोष रूपी पानी डाल रहे थे इस समुद्र में, पहले ही दोषों का समुद्र है, उसमें से हम अपना भगोना मटका भर भर के और दोष डाल रहे थे इसके अंदर। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कैसे परिवर्तन देखिए, कि वही दोषों का सागर या हमारी तरफ से दोषों का योगदान उस सागर के अंदर अमृत में परिवर्तित हो जाता है। और हाल ही में एक बहुत ही सुंदर घटना हमारे इस्कॉन के केंद्र में हुई जिसे मैं सुनाना चाहूंगा, और इस घटना को सुनकर पता लग जाना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी की जो जादुई कृपा अब तक किस प्रकार से बद्ध जीवात्माओं के जीवन में फैल रही है। तो यह घटना हुई फ्रांस में, फ्रांस में पेरिस नाम का शहर है, राजधानी है। तो वहां पर हमारे हरे कृष्णा आंदोलन की एक माता जी जो पुस्तक वितरित कर रही थी, प्रभुपाद जी की पुस्तक, और वो ट्रेनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ट्रेन में जा जाकर। तो वहां पर एक दूसरे देश का व्यक्ति आया हुआ था पेरिस में, स्पेन का कोई आदमी, उस देश का आदमी पेरिस में आया हुआ था कुछ उसके काम से, तो वो उस ट्रेन में था। और ये माताजी पुस्तक वितरित करते करते इस व्यक्ति के सामने आई और इस व्यक्ति को कृष्ण पुस्तक दिखाया। कृष्ण पुस्तक आपने देखी होगी, भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं दशम स्कंद से। तो कृष्ण पुस्तक दी तो ये व्यक्ति कृष्ण पुस्तक हाथ में लेकर सबसे पहले तो वो प्रहार करता है उस महिला के ऊपर जोर से अपने मुट्ठी से, और वो कृष्ण पुस्तक लेकर उस महिला के सर पर जोर से मारकर खून बहाना शुरू कर देता है इस माताजी का। और वो कृष्ण पुस्तक को लेकर वहीं पर सामने फाड़ता है और फाड़कर वहीं पर फेंक देता है और कहता है कि फिर से इस ट्रेन में घुसना मत। तो बिचारी वो माताजी रोते हुए और रक्त बह रहा है और वो ट्रेन से बाहर आ जाती है, और रोना इसलिए आ रहा था कि कृष्ण की पुस्तक फाड़ दी इस व्यक्ति ने। तो अब कृष्ण पुस्तक को फाड़ दी है तो उसने सोचा कि ये सब मैं जो भी फाड़ के नीचे फेंका हूं इसे इकट्ठा कर अपनी पत्नी को दिखाता हूं कि देखो मैंने क्या किया इन हरे कृष्ण वालों के साथ। तो वो अपने देश गया स्पेन, वहां जाकर अपने पत्नी को दिखाता है फटी कृष्ण पुस्तक, ये देखो मैंने आज वो हरे कृष्ण वालों के साथ क्या किया, और दिखाते हुए उसे डाइनिंग टेबल पर फेंक देता है। तो फटी कृष्ण पुस्तक डाइनिंग टेबल पर ऐसे पड़ी थी और पूरा परिवार अपने अपने कार्यों में उस दिन व्यस्त हो गया। तो जो नौकरानी उस दिन आई इनके घर की, वो नौकरानी आकर देखती है कि डाइनिंग टेबल के ऊपर पुस्तक बहुत सुंदर है परंतु फटी अवस्था में है। तो इसने सोचा कि कोई बच्चे ने फाड़ दी होगी, तो इस नौकरानी ने, क्योंकि और कोई उस समय घर पे नहीं था, तो एक एक पन्ना, फटा हुआ पन्ना और जो उसका आगे का बाइंडिंग निकल गया था, उस सब को गोंद से चिपकाया और पूरी कृष्ण पुस्तक को चिपकाकर उनके बुक शेल्फ में वापस डाल दी। लगा कि इनकी घर की कोई पुस्तक होगी, तो पूरी कृष्ण पुस्तक को बाइंड कर हाथों से गोंद लगाकर बुक शेल्फ में डाल दी। अब कुछ दिन बीते, महीने बीते, कुछ साल बीते इस परिवार वालों के, तो कुछ साल पश्चात जो पत्नी थी इस व्यक्ति की, पत्नी और उसकी बेटी दोनों को एक जानलेवा बीमारी हुई और कुछ साल पश्चात पत्नी और बेटी दोनों मर गए, और एक और बेटा था वो किसी और लड़की के साथ भाग गया। तो ये व्यक्ति अब इतना डिप्रेशन में चला गया कि घर में कोई नहीं, अकेला, तो इसने सोचा कि मैं आत्महत्या करूं। परंतु इसने सोचा कि आत्महत्या करने से पहले मैं भगवान की कोई पुस्तक, बाइबल पढ़ना चाहता हूं। हालांकि था वो नास्तिक, परंतु सोचा कि मरने से पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो फिर वो गया अपने कमरे के बुकशेल्फ में, इतने सालों पश्चात बुकशेल्फ खोलता है, क्योंकि वो नास्तिक था तो बाइबल तो कभी रखी नहीं थी उसने, उसमें ढूंढ रहा था कहां पर बाइबल है, नहीं मिली बाइबल, तो देखा ये कौन सी पुस्तक है, तो वो पुस्तक निकाली और वो थी कृष्णा बुक। और ये बिल्कुल भूल गया, इसने देखा नहीं था कि कौन सी पुस्तक उसने फाड़ी थी, उसे पता नहीं। तो वो देखता है कि ये कोई आध्यात्मिक पुस्तक दिखती है, तो उसे पढ़ना शुरू करता है वो रात्रि के समय, और पूरे रात भर वो कृष्णा बुक पढ़ लेता है। और विशेष रूप से कृष्णा बुक में जब वो पढ़ता है, कंस उपदेश कर, वसुदेव उपदेश कर रहे हैं कंस को, जब कृष्ण पैदा होने वाले हैं शुरुआत के अध्याय में, तो वसुदेव जी कंस को प्रचार कर रहे हैं कि क्यों देवकी को नहीं मारना चाहिए, तो वो वसुदेव जी उदाहरण दे रहे हैं कि देखो आत्मा अमर है और ये जो शरीर है वो नाशवान है, और वो उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से हम एक कदम लेते हैं आगे और दूसरा कदम पीछे रहता है, और फिर दूसरा कदम आगे लेते हैं फिर पिछला कदम आगे लेते हैं, इस प्रकार से हम चलते हैं, उसी प्रकार से ये जो आत्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, जैसे हम एक कदम से दूसरे कदम में जाते हैं। तो इस व्यक्ति ने जब ये उदाहरण पढ़ा कृष्ण बुक के अंदर तो इसे बहुत अच्छा लगा कि इसका अर्थ है कि मेरे परिवार वाले मरे नहीं हैं, क्योंकि इस किताब के अनुसार वो शाश्वत आत्मा है। तो उसने पूरी किताब कृष्ण बुक पूरे रात्रि में पढ़ ली, और व्यक्ति यदि पूरी कृष्ण बुक पढ़ ले एक सिटिंग में तब फिर उसका भौतिक जीवन क्या बाकी रह जाएगा। तो जैसे ही पूरी कृष्ण बुक उसने पढ़ ली, अंत में देखा इस्कॉन स्पेन एड्रेस लिखा हुआ है, वो जिस देश में इस्कॉन का केंद्र था उस देश में वहां पर। तो तुरंत सुबह सुबह तैयार होकर वो जाता है इस्कॉन के मंदिर में पहली बार वहां पर, और जाकर वो खटखटाता है, और वो इस्कॉन टेंपल के जो प्रेसिडेंट है वो दरवाजा खोलते हैं, तो ये व्यक्ति बोलता है कि मैं पूर्ण प्रकार से शरणागत होने आया हूं आपके हरे कृष्ण आंदोलन में। और वो अच्छे थ्री पीस सूट वगैरह पहना हुआ था, तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि पहला कोई व्यक्ति है जो शरणागत होने आया है थ्री पीस सूट पहनकर। तो आओ आओ अंदर आओ, तो सब कुछ बताया, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ लिया था एक रात्रि में तो कुछ जानकारी मिल गई थी कि, और प्रभुपाद जी के तात्पर्य ऐसे हैं उनकी पुस्तकों के कि चाहे कोई भी पुस्तक आप उठाओ और पूरी पुस्तक पढ़ोगे तो पता लग जाएगा चार नियम क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र कैसे करना चाहिए, भक्तों का संग क्या है, सब पता लग जाता है। यह है प्रभुपाद जी की पुस्तकों की खूबी। तो धीरे धीरे वहां पर मंदिर में रहने लगा, तो इन्होंने पूछा भाई परिवार वगैरह, कोई परिवार नहीं यही परिवार है। तो आगे मुझे ब्रह्मचारी बनना है, तो ब्रह्मचारी आश्रम में आ गया। वो उसने कहा कि मुझे कुछ सेवा करनी है, मुझे सेवा दो। तो वहां पर अकाउंटेंट कोई नहीं था उनके मंदिर का, तो कहा कि अकाउंटेंट बन जाओ, तो अकाउंटेंट बना दिया, क्योंकि वो बैंकर था, उसका व्यवसाय एक बैंकर था वो, तो उसे अकाउंटेंट बना दिया। तो अकाउंटेंट बना दिया, उसने कहा पैसे कहां है तुम्हारे अकाउंट में, कोई पैसे नहीं। बोले इसलिए तो अकाउंटेंट बनाया है कि पैसे लेकर आओ डालो। तो उसके जितने भी घर वार था सब बेच बाच के जो पैसा मिला वो लाकर पहले अकाउंट में डाला, फिर उस अकाउंट का अकाउंटेंट बना वो। तो अकाउंटेंट बना, और कुछ महीने बीते, वहां पर अब पूर्ण प्रकार से भक्ति के कार्यों में लग गया, और एक जो टिपिकल हरे कृष्णा भक्त होता है लंबा तिलक कंठी माला छोटी यहां पे माला सब शुरू हो गई। और फिर हुआ ऐसा कि उसे बताया गया कि हम हरे कृष्ण वाले पुस्तक वितरित भी करते हैं, तब उसे धीरे धीरे याद आने लगा कि शायद मैंने उस महिला को जो मारा था वो शायद हरे कृष्णा की भक्त थी, और हुआ ऐसा कि वहां पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन के बाद सारे अलग अलग मंदिरों के, यूरोप के अलग अलग मंदिरों के पुस्तक वितरण करने वाले भक्त एकत्रित एक उत्सव में आए, कहां पर, स्पेन में इस इस्कॉन मंदिर में, और उसमें वो महिला, वो माता जी। तो जब देखा उनको तो पूरा याद आ गया उसे, और वो जाकर साष्टांग दंडवत कर पैर छूने लगा, और वो दूर दूर भागने लगी, ये क्या कर रहा है, कौन है ये। तो फिर इसने रोते हुए माताजी को कहा कि आपको याद है इतने साल पहले उस ट्रेन में मैंने मारा था और मैंने वो पुस्तक फाड़ दी थी। तो माताजी ने कहा मैं मेरे को बिल्कुल याद है, और मैं ट्रेन से बाहर जाते जाते प्रार्थना कर रही थी कि इस व्यक्ति को भगवान आप अपनी कृपा देना। मैं बाहर निकलते निकलते आप ही के लिए प्रार्थना कर रही थी, और आज मैं देख रही हूं कि आप तिलक वगैरह लगाकर, तो पूछा वो कौन सी पुस्तक थी जो मैंने फाड़ी थी। इस माताजी ने कहा वो है कृष्ण बुक। तब फिर इसे समझ में आया कि वही पुस्तक तो मैंने रात भर पढ़ी, मेरे घर पर कैसे आ गई वो पुस्तक। तो फिर उसने जब खोजबीन की तो पता लगा कि वो नौकरानी ने गोंद से चिपकाई और उसी के बुक शेल्फ में रखी, और उसने फिर इतने सालों बाद वो पुस्तक निकाली और पढ़ने के बाद वो हरे कृष्णा का भक्त बन गया। श्रील प्रभुपाद जी की। इसका अर्थ क्या है कि भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं हम कलयुग निवासियों के ऊपर कि यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की निजी पुस्तक दशम स्कंद में जो उनकी ही लीलाएं हैं उनको यदि कोई फाड़ के भी फेंक दे तो एक फटी कृष्ण बुक पढ़ने से एक व्यक्ति के जीवन में देखिए कैसा परिणाम होता है। तो यदि हम बिना फटी कृष्ण बुक फड़ेंगे तो ये जो हृदय हमारा फटा हुआ है कलयुग के कारण वो जुड़ जाएगा। ग्रीस के एक व्यक्ति, ये व्यक्ति जब भी हरे कृष्ण भक्त हरे अपना नगर संकीर्तन के लिए जाते तो ये मजाक उड़ाता था उनका। हरे कृष्णा लोग करते ना, हरे कृष्णा। और कई बार ऐसे जब हम नगर संकीर्तन के लिए जाते हैं तो कई लोग आसपास खड़े खड़े हाँ हरे कृष्ण ऐसे से करते रहते हैं, तो ये मजाक उड़ाया करता था ऐसे। और फिर ये व्यक्ति घर पे जब आता ना तो घर पे आने के बाद ये जब डाइनिंग टेबल पर बैठता अपने परिवार के साथ, तो डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद वहां पर कटोरी चम्मच प्लेट ये सब रहती, तो खाना जब आने में थोड़ा समय रहता तो ये चम्मच और प्लेट लेकर हरे कृष्णा ऐसे उनकी नकल उड़ाकर ये अपने डाइनिंग टेबल पे किया करता जब तक खाना नहीं आता तब तक। तो उसका एक छोटा सा पुत्र था तो पुत्र को भी कहता तू भी कर। तो छोटा का पुत्र पिताजी को देखता वो भी अपना छोटी सी प्लेट उठाकर हरे कृष्णा वो भी दोनों बजाते रहते। और रोज ये नियम था कि जब खाना आने से पहले वो लोग अपनी अपनी थाली बजाकर हरे कृष्णा का कीर्तन करते। तो अब हुआ ऐसा कि महीना साल बीत गया, इसमें कई साल बीत गए, रोज यही उनका नियम थाली बजा बजाकर हरे कृष्णा गाना। तो ये लड़का बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद ये जब बाहर निकला तो इसने भक्तों को देखा और इसे पता नहीं था कि क्या है ये हरे कृष्णा या इस्कॉन कोई संस्था भी है और भक्त भी हैं जो ये लोग करते हैं। तो इसने तो केवल अपने पिताजी के साथ गाया था इसे घर पर डाइनिंग टेबल के ऊपर प्लेट और चम्मच से के साथ, और यहां पर देख रहा है कि ये सब, तो जाकर उनसे कहता है तुम लोग को कैसे पता है। तो भक्त पूछते क्या कैसे पता, तो ये तो मैं और मेरे पिताजी गाते हैं। बोले क्या बोल रहा है तू तो? हां रोज हम डाइनिंग टेबल पर थाली और चम्मच लेकर बजाते रहते हैं और ये हरे कृष्ण करते रहते हैं। तो उसने कहा ठीक है अभी थाली चम्मच छोड़ो, ये लो करताल, करताल बजाओ अब। उसने कहा करताल ये क्या होता है? तो करताल हाथ में दे दिया, बोलो चलो हमारे साथ। तो करताल हाथ में दे दिया और नगर संकीर्तन के साथ साथ उसे मंदिर में ले गए और वो हरे कृष्ण का भक्त बन गया। जय श्री प्रभुपाद की। तो यदि डाइनिंग टेबल पर भी भूख लग जाए और खाना नहीं आ रहा है तो प्लेट और चम्मच लेकर तो शुरू कर देना चाहिए कि आगे चलकर भगवान करताल भी थमा देंगे और फिर हमारे जीवन की ताल बदल जाएगी। तो इसीलिए इस भजन में भक्तिनोद ठाकुर यही गा रहे हैं कि ये जो कलयुग रूपी कुत्ता है, इस कुत्ते के प्रकोप से, इसके भौंकने से, इसके काटने से, कुत्ता काटने से क्या हो जाता है, जानलेवा बीमारी होती है, तो वैसे ही ये कलयुग जब जिसको डस लेता है तो उसे आध्यात्मिक रूप से खत्म करता है। और यदि हमें कली कुकुर कदन जदि छाओ है, कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री सचिनंदन गाओ हे, कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री सचिनंदन गाओ हे, कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री सचिनंदन गाओ हे, श्री सचिनंदन गाओ हे, श्री सचिनंदन गाओ हे, कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री सचिनंदन गाओ हे, कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री सचिनंदन गाओ हे, श्री सचिनंदन गाओ हे, श्री सचिनंदन गाओ हे, गायो प्रभु पादा प्रभु पादा प्रभु पादा जयो प्रभु पादा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदी नमः।